चलते हैं रोमियो का आठवां अध्याय और उसका चौदहवां पद को पढ़ेंगे
और फिर हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं इसमें रोमियो चैप्टर 8 वर्स 14।
आप में से एक जन पढ़िए तो 8-14। तो जितने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। और पिछले बार हमने उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया, आज थोड़ा सा और करते हैं। Let's pray। हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा, हम इस समय धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे जीवन में हमारे साथ रहकर हमें सिखाता है, हमें स्मरण दिलाता है, हमें सब सत्य की ओर अगुवाई करता है और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है, यानी हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह से करा। तो आज प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम सबकी आंखों को, हम सबके हृदयों को तो खोलेगा प्रभु, ताकि हमें पवित्र शास्त्र की बातें समझ आए जिससे हमारा जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से हमें पवित्र शास्त्र को समझने के लिए आप जानते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। मैंने आपको पिछले बार कहा था कि इस पद को समझने के लिए हमें रोमियो की पत्री का पहला अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, उसके बाद फिर आठवां अध्याय पूरा पढ़ना चाहिए, तब जाके हमें ये बात समझ आती है। और मैंने ये भी आपको पिछले संडे बताया था कि पहला अध्याय में क्या क्या मुख्य रूप से है, दूसरा अध्याय में क्या क्या है, आपको याद होगा। इस पूरी रोमियो की पत्री में हम क्या देखते हैं, मुख्य रूप से दो बातों को देखते हैं कि हमारा उद्धार जो है, हमें जो सालवेशन मिला है वो अनुग्रह से मिला है विश्वास के द्वारा, यानी हमारे किसी भी काम के वजह से हमें उद्धार नहीं मिलता। ये स्पष्ट रूप से इस रोमियो की पत्री में खास करके पहला अध्याय से लेके आठवां अध्याय तक आपको बताया जाता है, फिर नौवां अध्याय में उसको दोहराया जाता है, दसवां अध्याय में फिर रिपीट किया जाता है। और हमें यह समझ आता है कि जो कुछ आज हम है वो परमेश्वर का अनुग्रह से है। और मैंने बताया था आठवां अध्याय का तेरहवां पद में से, क्योंकि उसमें लिखा है कि शरीर के अनुसार, यानी पुराने विचार, शरीर जो बाइबल में इस्तेमाल होता है ज्यादातर उसका मतलब है पुराना विचार। जब हम पुराने विचार से चलते हैं तो उसका परिणाम जो है मृत्यु है, लेकिन जब आत्मा के द्वारा हम चलते हैं हमें जीवन मिलता है। और उसमें से हमें ये बात भी समझ आई, आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब है कि पुराने विचारों के अनुसार नहीं चलना, उसका विपरीत। अब एक दो तीन चार पांच सेकंड के लिए सोच के मुझे बताइए, हमारे पुराने विचारों में सबसे खराब चीज या सबसे खराब बात क्या होती थी हमारे पुराने यानी जीवन में, यीशु मसीह से मुलाकात होने से पहले, यीशु मसीह को पाने से पहले हमारे जीवन में जो पुराना जो जीवन यानी पुराना सोच विचार में सबसे खराब बात क्या होती थी? थोड़ी सी मदद करता हूँ, ये सब ठीक है, हम पाप करते थे, गलती करते थे, घमंडी थे, सब कुछ था, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ पाने के लिए क्या करते थे?
काम करते थे,
हम कर्म करते थे, हम काम करते थे। हमारे देश के हिंदू धर्म में मुख्य रूप से दो रास्ते हैं मुक्ति पाने के लिए, एक कर्म मार्ग और एक भक्ति मार्ग। दो रास्तों से ये सिखाया जाता है कि आपको मुक्ति मिल सकती है। तीसरा रास्ता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि उसके बारे में पुराने जमाने के सन्यासियों को मालूम है, लेकिन उसको सिखाया नहीं जाता, वो है पुष्टि मार्ग। शायद आपने सुना हो, एक भक्ति मार्ग, एक कर्म मार्ग और एक पुष्टि मार्ग। अब उसके बारे में बाद में समझाऊंगा। सबसे खराब चीज क्या थी, हम परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए कुछ करते थे और फिर सोचते थे क्योंकि हमने या मैंने ये सब कुछ किया है तो उसके बदले में अब परमेश्वर कुछ मुझे देगा। और यीशु मसीह में आने के बाद यदि हम पुराने विचार के अनुसार चलते हैं तो हम क्या करते रहेंगे? आज भी हम ये सोचेंगे कि मेरे कुछ अच्छे कामों की वजह से यीशु मसीह मेरे लिए कुछ करेगा, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम में आपको क्या मिलेगा? जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराने विचार में चलना जो है मृत्यु है, लेकिन आत्मा के द्वारा चलाए चलना जो है जीवन है। तो सबसे बड़ी गलती जो आज एक मसीह कर सकता है वो ये है कि यीशु मसीह से कुछ पाने के लिए वो कुछ काम करे। हमारे इस नया जीवन की शुरुआत कैसे हुई? सब कुछ अनुग्रह से हुआ। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब है कि हम किसी भी तरह उसकी कीमत नहीं चुका सकते थे। उस चीज को जो हमें यीशु मसीह की ओर से मिली है उसको पाने के लिए हम कोई भी काम कर नहीं सकते थे, ऐसा कोई भी काम करने के लिए हमारे पास ना तो योग्यता थी ना हमारे पास बल था। उस समय यीशु मसीह ने हमारे लिए वो काम मुफ्त में किया। और हमारा चर्चा का विषय क्या है? आत्मा के द्वारा चलाए चलना। आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब पिछली बार मैंने थोड़ा सा बताया था कि जो कुछ पवित्र शास्त्र हमारे विषय में हमें कहता है उसको जब पवित्र आत्मा हमें समझाता है उससे ग्रहण करना। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आत्मा के द्वारा चलाए चलना नहीं है। और वो क्यों है मैं आपको अभी बताऊं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं पवित्र आत्मा आपको मालूम है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं पवित्र आत्मा कुछ बातों पर रोशनी डाल, और अधिकतर आप देखेंगे सबसे पहले परमेश्वर या पवित्र आत्मा आपको अपने बारे में बताएगा। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं बताएगा, आपके अपने बारे में पवित्र शास्त्र बताता है। और जब आप उसको स्वीकार करते हैं आप आत्मा के द्वारा चलते हैं। यानी आत्मा के द्वारा चलाए चलने को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि हम कौन है, या हमारे विषय में हमारी जो नई पहचान है मसीह में उसको समझना और उसके अनुसार चलना। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि यीशु मसीह की या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जो है वो आत्मा के द्वारा चलाए चलना नहीं है। का कारण मैं बताता हूँ। यदि हम ये जाने बगैर कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है पवित्र शास्त्र में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर हमें अपने विषय में बताता है उसमें हम परमेश्वर को भी देख लेते हैं, उसके प्यार को समझ पाते हैं, उसके स्वभाव को देख पाते हैं। इसलिए जब भी परमेश्वर हमारे विषय में बाइबल में हमें कुछ बताता है उसमें उसकी दो पहलू है, एक हम क्या है और एक परमेश्वर क्या है। और उससे जाने बिना अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे हम फिर से वो काम करेंगे जो हम पहले करते थे, उसको प्रसन्न करने के लिए हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उससे कुछ पाने के लिए हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। लेकिन जब हमें समझ आता है कि हम मसीह में आज कौन है क्या है, तब हम उसकी आज्ञाओं को खुशी से मानेंगे, उस प्यार के कारण मानेंगे, क्योंकि हमें समझ आता है कि उसने हमसे पहले प्यार किया, हमें यह समझ आता है कि वो हमसे प्रसन्न है। हम उसको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि वो हमसे खुश है।
कैसे पता है?
क्या इन दिनों में पवित्र भाई देखिए मैंने आपको होमवर्क किया दिया था
पहले अध्याय से लेकर आठवां अध्याय तक, मैं पूछूंगा नहीं आपने किया कि नहीं, क्योंकि फिर आप अच्छा अच्छा जवाब देंगे कि जैसे अमित ने मुंह दर्ग कर दिया
तो आप इस हफ्ते करने की कोशिश करें। आपके पास 6-7 दिन है आपके अपने फायदे के लिए। मैंने कहा था एक साथ पढ़ना तभी ये बातें समझ आती है अच्छी तरह। अगर आप 8 दिन में पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। एक ही बारी में पढ़ने की कोशिश कीजिए, 15 मिनट में आप पढ़ सकते हैं और पवित्र आत्मा यूं ही आपको समझाएगा कि इसमें क्या। कि मैंने भी ऐसे किया था, एक ही सिटिंग में एक ही बारी में 8 अध्याय को एक साथ पढ़िए तब बहुत कुछ समझ आएगा। आपको कैसे बताया कि परमेश्वर आपसे खुश है? क्या इन दिनों में पवित्र आत्मा ने आपको पवित्र शास्त्र में से कहीं से दिखाया कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? या इस हफ्ते से पहले भी कभी आपको दिखाया, आपको पवित्र आत्मा ने समझाया कि God is pleased with you? तो आप चलिए इफिसियों के पत्र निकालिए पहला अध्याय और जल्दी से कोई 4 और 5 पत्र पढ़िए। इफिसियों के पत्र पहला अध्याय 4 और 5। स्पीड में पढ़ लिया कि कुछ नहीं समझ आया तो इसमें क्या हम देखते हैं पहला अध्याय का 4 और 5 में कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले किसको चुना? मुझे चुन लिया। उसमें आप क्या देखते हैं? उसका प्यार देखते हैं। और लिखा भी है कि उसने ये काम उस प्यार के कारण किया। और इसमें ये फिर ये हम ये भी देखते हैं कि वो उसने हमें इसलिए चुना कि हम उसके क्या हो, क्या हो, पुत्र हो, राइट, ले बालक पुत्र हो। रोमियो के पत्र का 8 अध्याय का 14 पद में हमने क्या पढ़ा था? जितने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही पुत्र है, बाकी सब संतान है। हमने देखा था यूहन्ना का सुसमाचार का 1 अध्याय का 12 पद में यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना आत्मा में होकर कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको संतान होने का अधिकार दिया, लेकिन जितने लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो संतान से पुत्र बन जाते हैं। हर पुत्र और संतान में फर्क है, हर पुत्र संतान है लेकिन हर संतान पुत्र नहीं। लेकिन इफिसियों की पत्री हमें क्या सिखाती है कि उसने हमें ले पालक पुत्र बनाया। इसका मतलब क्या है? कभी आपने पढ़ते समय ध्यान दिया कि ले पालक पुत्र क्या है? वो पुत्र जिसको उसने लेके पाला है, राइट आपने कभी समझने की कोशिश की लेखपालक का पुत्र का मतलब है कि जिसने उस जिसको उसने पुत्र होने का अधिकार दिया है और लिखा है कि ऐसा करने से वो बहुत खुश हो गए।
आपके हिंदी बाइबल में है ना
अपने भले अभिप्राय के अनुसार कठिन हिंदी शब्द इसका मतलब क्या है because he was so pleased to do that. अब जिस दिन पवित्र आत्मा अभी तो आपने मैंने पढ़ा आपने पढ़ा आपने सुना लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा ये बात आपके लिए प्रकाशित करता है और आपको समझ आता है कि यीशु मसीह जो है मेरा 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 उद्धारकर्ता मुझसे खुश था उस समय जब मेरे लिए किया था और आज भी खुश है तो बात कुछ और है। तब आप उसे खुश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि आपसे वो खुश है। कब की बात 2000 साल पहले कब की बात है आज आज की तारीख में वो आपसे खुश है और कल क्या होगा अगर मेरे सारे काम अच्छे होंगे तो मेरे से खुश होगा। इसलिए मैं आपको पहले भी कई बार समझाया हूँ आज फिर याद दिलाऊंगा ये पवित्र शास्त्र जो है ये पवित्र आत्मा ने लिखवाया है इसलिए पवित्र शास्त्र पढ़ते समय थोड़ा सा इनविटेशन देना पवित्र आत्मा को कि मेरी सहायता करो वो हमें हमें समझाएगा आपको समझाएगा। और पवित्र आत्मा जब एक बात आपको समझाता है और उसके बाद जब बात समझने के बाद आप जब उसको ग्रहण करते हैं यानी उसको आप स्वीकार करते हैं तब आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं क्योंकि फिर उस समय से उन बातों में आप पुराने विचार को अपने दिमाग से हटाकर उस नए विचार को जो पवित्र आत्मा ने आपको दिखाया है चलना शुरू करते हैं और आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। मैं आपको क्यों इस ये जोर देकर समझाता हूँ कि हमारे बारे में जो कुछ पवित्र शास्त्र कहता है उसको ग्रहण करना जरूरी है। अभी हमने इफिसियों की पत्री को पढ़ा था ना पहला अध्याय 4-5
जी
एक मिनट में आपको उसका एक ट्रांसलेशन देता हूँ जो मुझे ढूंढना पड़ा मैंने मुझे एक दिन कुछ दिन पहले मैंने जब मैं जब अध्ययन कर रहा था पवित्र आत्मा ने उस मुझे समझाया उसमें से मैं ढूंढता मुझे मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा। नया नियम जो है यानी मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक नया नियम जब आप पढ़ते हैं आप देख आज के बाद आप देखना आपको ज्यादा उसमें आपके बारे में पता चल रहा है आपके बारे में उसमें बहुत सारी जानकारी है क्यों क्योंकि जहां परमेश्वर आपके विषय में मेरे विषय में बता रहा है वहां पर वो अपने विषय में भी बताता है। इसका मतलब नया नियम में आपके बारे में भी है और यीशु मसीह के विषय में। रोमियों की पत्री पहला अध्याय से लेके आखिरी आखिरी 16 अध्याय तक मैंने आपको बताया चर्चा का विषय क्या है हमारा उद्धार जो है अनुग्रह से मिला है और विश्वास के कारण यानी रोमियों के पत्र हमें यह समझाती है कि हम मसीह में कौन है और मसीहा ने हमारे लिए क्या किया है। उसके बाद जब आप इफिसियों के पत्र पढ़ते हैं पहला अध्याय में जहां से हमने अभी पढ़ा था हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है उसके उस अनुग्रह के कारण उसने हमें चुना है और फिर हमें ये बताता है कि आज हम मसीह में क्या है हमें यह पता चलता है कि हमें जो पवित्र आत्मा मिला है वो एक बयाना है एक गारंटी है आने वाली मिराश के लिए। पहला अध्याय में किसके बारे में चर्चा हो रही है इफिसियों की पहली पत्री पत्री का पहला अध्याय पूरा हमारे विषय में है और हमें बताया जाता है कि हम मसीहा के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं और फिर ये भी बताया जाता है कि शैतान जो है हमारे पाप के नीचे है पहला अध्याय और उसके बाद इस पहले अध्याय में एक प्रार्थना है पवित्र आत्मा एक प्रार्थना उसमें लिखी है पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर पौलुस कहता है कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें आत्मिक समझ या आत्मिक बुद्धि और समझ मिले प्रकाश मिले ताकि तुम परमेश्वर को और अच्छी तरह जान सको। इतनी सारी बातें बताने के बाद इसका मतलब उसमें और गहराई है उसके लिए हमें हेल्प चाहिए इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें बुद्धि और प्रकाश का आत्मा मिले ताकि तुम परमेश्वर को और करीब से जान सको और ये भी जान सको कि तुम्हारे बुलाने के पीछे क्या आशा है और फिर उस सामर्थ्य को जान सको जो विश्वास करने वालों में काम करती है। पहला अध्याय किसके बारे में चर्चा है उसमें हमारे विषय में और उसमें हम परमेश्वर के कामों को परमेश्वर के प्यार को उसका अनुग्रह को उसकी योजना को उसकी बुलाहट को देख सकते हैं। दूसरा अध्याय में जब हम जाते हैं उसमें पता चलता है कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे लेकिन परमेश्वर ने उस प्यार के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया हमें जीवित किया और उसमें जोर दे के लिखा है कि हमारे कामों के कारण नहीं अनुग्रह से हमें सालवेशन या उद्धार मिला है। उसके बाद उसमें एक खुशखबरी है कि आज हम परमेश्वर के क्या है दूसरा अध्याय का 10वें पद में लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं जिसका अगर आप ग्रीक में जाएंगे उसमें लिखा है कि हम उसके मास्टरपीस सोचिए इस बारे में तो नया नियम किसके बारे में बताता है? मेरे बारे में और यीशु मसीह के बारे में। जहां पर मेरे बारे में जानकारी है उसमें यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह की कृपा सब कुछ मैं देख सकता हूं। परमेश्वर हमारे विषय में हमें क्यों बता रहा है? कारण है, अभी बात। तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में वो बताता है कि उस भेद के बारे में जो जो चर्च का वो भेद जिसमें यहूदी भी है और अन्य जाति के भी लोग, उसमें भी एक प्रार्थना है। तीसरा अध्याय में एक प्रार्थना है जिसमें वो कहता है कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में तुम्हें सामर्थ और बल मिले आत्मा से, ताकि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसा रहे और तुम्हारा जीवन की जो नींव है वो परमेश्वर का प्यार हो। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम परमेश्वर के उस प्यार की चौड़ाई और लंबाई और गहराई और ऊंचाई को पहचान सको, यानी उसके चारों डिमेंशंस तुम्हें समझ आए। तो पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय में हमारे विषय में सब कुछ बताने के बाद कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, आज हम कहाँ बैठे हैं, आज हमारी हैसियत क्या है, आज हम परमेश्वर के मास्टरपीस और उसके घराने के सदस्य हैं और हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, शैतान हमारे पैर के नीचे है, ये सब कुछ बताने के बाद अगर आप चौथा अध्याय में जाएंगे उसमें लिखा है कि इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुम अब ऐसा चलो। तो अगर हम पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय की बातों को नहीं समझते तो चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय और छठा अध्याय की बातों को करना बेकार है, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करेंगे जिससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसका अंजाम मृत्यु हो। पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय को समझने के बाद हम अपने आप वो करेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर का प्यार हमें समझ आता है तो हमारे हृदय में भी उसके लिए प्यार होगा। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्यार के बिना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकते। फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अब मेरी आज्ञा क्या है, नहीं मेरी आज्ञा कठिन नहीं है, लेकिन जहां पर यीशु मसीह ने यह कहा कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उसके बाद तुरंत यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इसलिए तुम्हें यह आज्ञा देता हूं एक दूसरे को प्यार करो। तो उस आज्ञा जो सबसे पहले आज्ञा उसको पालन करने के लिए पहले उसके प्यार को समझना जरूरी है, उसने जो हमारे लिए किया है उससे समझना जरूरी है। अनुग्रह या अंग्रेजी में ग्रेस का मतलब एक्चुअली परमेश्वर का प्यार, उस प्यार के कारण उसने सब कुछ हमारे लिए कर डाला। आज परमेश्वर से कुछ, यहाँ तक कि आज उससे कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए शॉकिंग होगा, हम विश्वास करने की कोशिश करते हैं ना कि विश्वास करूं ताकि कुछ मिल जाए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको उसका प्यार समझ आता है, अगर उसका अनुग्रह आपको समझ आता है तो आपको पता चलेगा कि जो आपको चाहिए आपको मिलता रहे। आपको प्रार्थना में विश्वास करने के लिए जतन करने की जरूरत नहीं है, आपके मन में शांति होगी, आप परमेश्वर को बोलेंगे उसके बाद आपके मन में शांति होगी, क्योंकि आप उसके प्यार को पहचानते हैं, आपको मालूम है कि वो आपको प्यार करता है इसलिए आपको सब कुछ देगा।
इसका मतलब क्या है कि हम जब गलत रास्ते में कभी चल पड़ते हैं या जब हम गलतियां करते हैं और धीरे से चुपके से पाप भी करते हैं तभी वो हमें देगा? क्यों देगा?
क्योंकि वो हमें प्यार करता है। कैसे पता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा ने समझा है। इसलिए भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है कि वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। लिखा है क्या? पढ़ा है? पक्का है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, यानी आप पाप करते जाओ तभी वो आपको देता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको प्यार करता है। फिर पाप का क्या होगा? वो तो उन पापों का है जो आपने पहले किया, अभी जो आप फ्रेश करेंगे उसका क्या होगा?
एक जगह लिखा है कि हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, आपने कहा कि वो हमें सब कुछ देगा, यानी पाप के हालत में रहकर भी आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देता रहेगा, क्योंकि वो आपसे खुश है। फिर पाप का क्या होगा?
पाप की सजा क्या है? पाप की सजा क्या है? नहीं, पाप की कोई सजा नहीं है। बाइबल फिर से पढ़िए, बाइबल में कहीं लिखा है कि पाप की सजा मृत्यु है? वेजेस ऑफ सिन, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, पाप की सजा नहीं। यानी जब आप पाप करते हैं मूवी का खाते में आपका क्रेडिट हो जाता है, कुछ आपके आपके जो लेजर बनता है ना उसमें आपके खाते में लिखा जाएगा कि ये पाप के बदले में उसको ये मिले, क्योंकि वो परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। जब आप पाप करते हैं हमारे खाते में उसके बदले में कुछ मिलता है, क्योंकि जब आप लोग जो नौकरी करते हैं आप फ्री में तो नहीं करते ना, आपके बैंक में आ जाते हैं ना सैलरी अकाउंट में पैसे आ जाते हैं अपने आप, राइट? क्रेडिट हो जाता है ना, एक महीने आपने काम किया, आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, कुछ सेल्स ज्यादा की, इंसेंटिव भी आपके नाम से क्रेडिट हो जाता है, राइट? तो जब आप पाप करते हैं तो अपने आप आपके खाते में वो क्रेडिट हो जाता है। ये नहीं कि जब आप पाप करते थे परमेश्वर कहता है कि आप इसने पाप किया इसको मैं सजा देता हूं, नहीं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर हमें सजा देता है। लेकिन जब हम पाप करते हैं हमारे खाते में हमारे लिए जो बुक है उसमें लिखा जाता है, अपने आप चढ़ जाता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस, ATM, उसको परमेश्वर रोकेगा नहीं, क्योंकि वो तो परमेश्वर का नियम है। अगर मैंने बाइक छोड़ दिया तो नीचे कोई आएगा ना, तो वो उस बात को परमेश्वर रोकेगा नहीं, लेकिन क्योंकि वो हमें प्यार करता है जो कुछ हमें चाहिए वो देता रहेगा। इसलिए आप देखते हैं कि जिनकी चाल चलन ठीक नहीं है चर्च में उनको भी आशीष मिलती है, फिर वो सोचते हैं कि अब क्योंकि मुझे आशीष मिल रही है मैं ठीक हूँ, तो आज वो गलतफहमी हट जाती है। जो व्यक्ति बिल्कुल खराब चल रहा है चर्च में उसको भी आशीष मिलती है क्योंकि वो परमेश्वर से मांग रहा है वो देता है। लोग सोचते हैं क्योंकि परमेश्वर मुझे सब कुछ दे रहा है मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, नहीं जरूरी नहीं है। और जो पाप हमने किया है उसके बदले में हमें सजा नहीं मिलती, हमें उसकी मजदूरी मिलेगी, हमारे खाते में जो भी मिलना है मिलता रहेगा, यह है फर्क। तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे आज। तो अभी तक जो हमने चर्चा की है उसका निचोड़ क्या है कि हम पुराने समय में यीशु मसीह को जानने से पहले हम अपने कामों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते थे ताकि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन पवित्र शास्त्र में से हमें यह मालूम चल जाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ मुफ्त में किया है। रोमियो की पत्री में फिर से जाइए, उसका पांचवा अध्याय में लिखा है कि जब हम शक्तिहीन थे, जब हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, उस समय उस ठीक समय पर यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपना जीवन दिया। उसमें मैं और आप हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, उस समय सब कुछ मुफ्त में, क्योंकि उधार की कीमत जो है बहुत बड़ी है, कोई नहीं चुका सकता, इसलिए परमेश्वर ने मुफ्त में दिया। और जब हमें वो बात समझ आती है और उसके बाद पर इतना ही नहीं कि उसने हमें छुटकारा दिया, अनंत जीवन दिया, आज हमें उसने किस स्थान पे बिठा रखा है, हमें क्या पदवी दी है, इन बातों को समझने के बाद या जब ये बातें हमारे समझ आती है हम उसके अनुसार सोचना शुरू करते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। वो है आत्मा के द्वारा चलना, तब हम परमेश्वर को स्वयं प्यार करना शुरू करते, तब उसकी बातों को मानने के लिए हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्यार है इसलिए हम सब कुछ करेंगे। अगर प्यार जैसे आप चर्च आते हैं, चर्च क्यों आते हैं, ताकि आपकी यीशु मसीह आपसे खुश हो जाए। हम चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमसे खुश है, इसलिए हम खुशी खुशी उसे मुलाकात करने के लिए उसकी स्तुति और आराधना। तो प्यार के बिना हम सही माने आराधना नहीं कर सकते। अब प्यार तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको प्यार को नहीं समझे, और उसके प्यार को समझने के लिए आत्मा के द्वारा चलाए चलना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि उसने हमारे लिए क्या किया। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि जितने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र, और परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब क्या है हमें और देखना होगा, क्योंकि अभी तक हमने उसमें चर्चा नहीं, तो अगले संडे हो सकता है कि हम उसमें थोड़ा सा जाएं। तो फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, पवित्र शास्त्र पढ़ते समय पवित्र आत्मा से सहायता लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें क्या बता रहा है, मेरे विषय में आज क्या बता रहा है। उसको ग्रहण करने को विश्वास के, जब हम परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हैं ना, when we accept things God says, that is faith। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं।